कितनी बढ़िया बात है, इतना इतना मांगने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी जितना देने में वे समर्थ है। इसलिए कुछ मांगने की बात भी नहीं है। फिर कोई कोई साधक कहने लगते हैं कि तो क्या करें, उस शांति काल में नाम का जप करें। अरे कुछ करने की बात तो रखो ही मत, जब कि ये बिना रहा जाता हो तो अलग से उसका समय निकाल लेना, ये भी अच्छा है। और भी कोई बात हो तुम्हारे जीवन में करने वाली साधना, उसको भी कर लेना, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ न करने की बात सब में समान रूप से फलदायक होता है। इसलिए कुछ न करो, प्रभु की कृपा शक्ति का आश्रय लेकर छोड़ दिया जाए अपने को, तो उनकी कृपा का जो प्रभाव है वह बहुत प्रत्यक्ष हो जाएगा अपने लिए। कृपा तो उनकी सदैव होती है, लेकिन जब हम अपने अहम का अभिमान लेकर दुनिया में रहते हैं तो उस अहम के अभिमान से कठोरता आ जाती है, आंखों में जड़ता छा जाती है, तो परम कृपालु की कृपा का दर्शन नहीं होता। और अहम के अभिमान को छोड़कर बिल्कुल अबोध बालक की तरह करुणामयी जननी की गोद में अपने को छोड़ दो, तो जिस समय हम अहम शून्य होते हैं उसी समय तत्काल सत्य के संग में होने का अनुभव हो जाता है। ये एक ही दिन में हो सकता है, ये एक ही बैठक में हो सकता है, इतना प्रत्यक्ष है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन में इस जगत में रहते हुए अगर कोई प्रत्यक्ष सत्य है, प्राप्य कुछ है, तो सत्य के उपस्थित होने का अनुभव ही है। और कोई प्राप्त कुछ होता नहीं है, सारी जिंदगी बस हाय हाय में बीत जाती है बेकार की, और हाय करके जन्मे थे और मरने के समय हाय करके मर जाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो अगर कुछ अपने को प्राप्त है तो प्रभु की समीपता का अनुभव ही प्राप्त है। अगर अपने को कुछ प्राप्त है तो उनके उपस्थित होने के का आनंद ही प्राप्त है। अगर इस जीवन को कुछ भर सकता है तो उस परम प्रेमास्पद के प्रेम का रस ही भर सकता है, और नहीं तो जन्म जन्मांतर कंगला बने दुनिया में फिरते रहो। अपने को समझाने के लिए यह भाषा मैं बोलती थी, कंगालियत की भाषा का प्रयोग मैंने अपने को समझाने के लिए किया, क्योंकि मैंने अपने कंगलेपन का दर्शन किया। बाहर से सिर ऊंचा करके डिग्री का एक आभास लेकर, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लेकर समाज में विचरण करते हुए भीतर भीतर में महाकंगाल थे, कुछ था ही नहीं अपने। तो महाराज जी के सामने बैठ करके इस कंगलेपन का वर्णन किया करती थी, तो ऐसी भाषा जब मैं बोलूं तो महाराज जी कहें कि देवकी जी मनुष्य के जीवन का सम्मान घटाओ मत। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने अपने को कंगाल कहा, अपनी कंगालियत को मैंने अपने द्वारा अनुभव किया और उस अपमान को सह नहीं सकी, तो विश्व भरण पोषण करने वाले विश्वंभर ने उस कंगालियत को मिटाने का रास्ता मुझसे पकड़ा दिया, वह बड़ा कल्याणकारी मेरे लिए हो गया। इसलिए प्रभु के ही प्रति रूप मेरा ही बोलने का राग मिटाने के लिए आप जो श्रोता मेरे आत्मीय बैठे हैं उनके सामने उस भाषा को दोहरा देती हूँ, कभी कभी कम ज्यादा नहीं बोलती हूँ, कम कभी कभी कर देती हूँ। क्यों कि इससे जब अपने आत्मसम्मान में ठेस लगती है तो चेतना जगती है, जिससे जीवन भर सकता है उसकी ओर आगे बढ़ने में तत्परता आती है। हो सकता है कि आप भाई बहनों में से भी जिससे जरूरत हो उससे काम आ जाए, इसलिए इस भाषा का प्रयोग करती हूँ मैं। ऐसा होता है जी। मैं कैसे कहूँ, मेरे लिए तो सब मेरे प्रणम में है, मेरे लिए तो सब मेरे प्रेमास्पद के रूप है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकती। मैं तो प्रणाम करती हूँ, मैं तो आदर करती हूँ, और आप ही की दी हुई वाणी के द्वारा आपकी पूजा में पत्र पुष्प चढ़ाती हूँ। मेरा कर्तव्य नहीं है कहने का, मैं अपने से कह सकती हूँ। लेकिन जो कोई अपना लाभ लेना चाहे तो स्वयं अपने लिए सोच सकता है। तो जीवन की गरीबी मिट सकती है, भीतर का अभाव मिट सकता है। और मैंने संतों की वाणी में भी सुना, आनंदमयी माँ से भी सुना, स्वामी जी महाराज से भी सुना, और उच्च कोटि के अनुभवी संत के पास बैठ करके अनुभव भी किया कि यह जो जीवन का परिवर्तन है, इधर से छूट करके उधर हो जाना, सारा का सारा बदल जाना, ये सब भ्रम का नाश हो करके उसके दर्शन में कृतकृत्य हो जाना, ये सब बातें पलक मारते हो जाती हैं, जरूरी लगती है। अब ये दूसरी बात है कि उस जीवन में हमारा कितना अनुराग है, उसमें हमारी कितनी निष्ठा है, पुराने सब रागों का प्रभाव मुझ चुका है कि नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि उसमें से हट करके फिर कब मेरा उन आंखों से संबंध जुट गया, और फिर कब मुझे संसार दिखाई देने लग गया, इस पर जब मैंने सोचा तो मुझे साफ दिखाई देता है कि नए राग तो पैदा होंगे नहीं, और पुराने जो रह गए होंगे जिनका नाश नहीं हुआ है, तो उन्हीं के प्रभाव से फिर शरीरों से तादात्म्य हो जाता है और संसार दिखाई देने लग जाता है। तो इससे कोई हानि नहीं होती। एक बार भी वास्तविक जीवन की झलक जिसने पा लिया, वो फिर से संसार में खोएगा नहीं, साधन बुद्धि से रहेगा, साधन बुद्धि से सेवा करेगा, साधन बुद्धि से विचरण करेगा, रहे सहे राग की निवृत्ति हो जाएगी, अवधि पूरी हो जाएगी, जो भी कुछ उसके लिए उपयोगी होता होगा उन परम करुणा सागर ने मंगलमय जीवन के मंगलमय विधायक ने वो सब करा कर उसे छुट्टी दिला देंगे। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, सभी भाई बहनों का हो सकता है। तो हमेशा के लिए उलझन में संदेह में मत पड़े रहो। 24 घंटे में कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए न करने के जीवन में साधना पसंद करो, तो अनुभव में आ जाएगी बात। अब शांत हो जाइए।
अकर्मण्य नहीं रहोगे विवेकी और प्रेमी बनोगे तो व्यर्थ चिंतन का नाश होगा, और व्यर्थ चिंतन का नाश होता है तो सार्थक चिंतन उदित होता है। नवर बहुत बार का होगा, व्यर्थ चिंतन का नाश होता है तो सार्थक चिंतन का उदय होता है। कभी कभी किसी किसी बात पर विशेष रूप से ध्यान चला जाता है, तो आज मुझे ऐसा लगा कि कितना सत्य है ये कि व्यर्थ चिंतन को पृष्ठभूमि में रख करके सार्थक चिंतन का प्रयास हम लोगों का कितना व्यर्थ जाता है। सार्थक चिंतन में नाम रूप का चिंतन समझी महाराज ने नहीं बताया, जैसे कि और दूसरी दूसरी प्रणालियों में है कि अपने इष्ट का चित्र अपने सामने रख लो और उनके रूप के चिंतन में लगे रहो। एक प्रणाली ऐसी है कि भगवत लीला के चिंतन में लगने की बात बताती है, जैसे लोग भी हैं जो लीला का चिंतन करते हैं, नाम रूप गुण लीला धाम इन सबके चिंतन की चर्चा साधना की प्रणालियों में है, अथवा नित्य तत्व से एक होने का चिंतन भी चलता है, मैं वही हूँ जो तू है, तो इस प्रकार की प्रणालियां तो हैं, उनको सार्थक चिंतन करते हैं। स्वामी जी महाराज वैसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं व्यर्थ चिंतन का नाश होगा तो सार्थक चिंतन उदय होगा। करना पड़ेगा सो नहीं कि जो ब्रह्म है तो मैं हूँ, जो वो है तो मैं हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, उदय होगा। कौन सा सार्थक चिंतन उदय होगा? तो तत्व जिज्ञासा अथवा प्रिय की लालसा, प्यारे प्रभु के प्रेम की प्यास तीव्र हो जाएगी, अथवा तत्व की जिज्ञासा असह्य हो जाएगी, तीव्र जिज्ञासा उदित हो जाएगा, अथवा तीव्र प्यास प्यारे प्रभु के प्रेम की प्यास तीव्र हो जाएगी। तो एक दिन मैं चर्चा कर रही थी आप भाई बहनों के पास कि हमारा नित्य संबंध उस अनंत तत्व से है जो उत्पत्ति विनाश से रहित है, उस तत्व से हमारा नित्य संबंध है, अर्थात हम उसी की जात के हैं, उसका और हमारा स्वरूप एक है, हमारा उसका आत्मीय संबंध है। ऐसी चर्चा हम कर रहे थे कि इसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं, इसको धारण करने की चेष्टा करते हैं, इस बात को याद करने की कोशिश करते हैं, ये बातें चलती हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाएगा तो सार्थक चिंतन अपने आप से उदित होगा, और सार्थक चिंतन भी किस रूप में? प्यारे की प्रियता की लालसा के रूप में, अथवा तत्व की जिज्ञासा के रूप में अपने आप से प्रकट हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, जिज्ञासा का जागृत होना और जिज्ञासा की पूर्ति युगपद है, ऐसा लिखा है स्वामी महाराज ने। प्रियता की प्यास की तीव्रता का बढ़ जाना और प्रिय मिलन का सरस अनुभव युगपद है। महाराज जी के साहित्य में इस तरह की बातें बहुत आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, और भी अनुभवी संतों के ग्रंथों में इस तरह की बातें हैं, लेकिन औरों के बारे में उतना मुझको मालूम नहीं है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं उन सब, केवल स्वामी जी महाराज का ही साहित्य पढ़ा है, लिखा है, सुना है। तो जिज्ञासा की तीव्रता और जिज्ञासा की पूर्ति ऐसे ही एक साथ होती है जैसे कि सूर्य का उदय और अंधकार की निवृत्ति। ऐसा कहो कि सूर्य का उदय हो गया तो तुमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अंधकार की निवृत्ति हो गई, क्योंकि दोनों में इतनी एकता है कि एक ही अर्थ निकलेगा। अथवा ये कहो कि अंधकार की निवृत्ति हो गई तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि सूर्योदय हो गया, क्योंकि निवृत्ति हो गई तो उसका मतलब है कि सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय हो गया तो उसका अर्थ है कि अंधकार मिट गया। तो इसी तरह से साधक की ओर से सबसे बड़ा पुरुषार्थ किस बात में है कि वो व्यर्थ चिंतन के नाश का उपाय कर ले। व्यर्थ चिंतन का नाश हो गया तो अब फिर सार्थक चिंतन के लिए कोई नया प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इतना स्वाभाविक है, इतना स्वाभाविक है, अपने आप से होगा। क्या होगा? तो तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी या प्रभु प्रेम की प्यास बढ़ जाएगी। तो प्रेम की लालसा तो हम सब भाई बहनों के भीतर है, मौजूद ही है। तो जब हम उस प्रेम रस की प्यास को संसार की सहायता से तृप्त करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है और व्यर्थ चिंतन होते हैं। लेकिन जब हम उस परम पवित्र प्रेम रस को ही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे कि उसी से हमारी तृप्ति होगी, वही हमको भर सकता है, इधर उधर देखना बंद कर देंगे तो व्यर्थ चिंतन का नाश होगा, और व्यर्थ चिंतन का नाश होगा तो सार्थक चिंतन उदित हो जाएगा। अर्थात वह प्यास अति तीव्र हो करके प्रेम के तत्वों में बदल जाएगी। तो स्मृति शब्द का प्रयोग भी किया है महाराज जी ने, स्मृति और प्राप्ति को एक बताया। उसी तरह से प्रेम की प्यास का अति तीव्र होना और उस रस की निष्पत्ति, इसको एक बताया। अब अपने लोगों के स्तर पर क्या सोचना है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कैसा लगता है, तो आज अपनी दशा में दोनों ही बातें मिल रही हैं। एक तो ऐसा लगता है कि सत्य की जिज्ञासा भी है, प्रभु प्रेम की प्यास भी है, और संसार का सहारा भी है, और संसार के सहारे थोड़ा बहुत जो अच्छा लगता रहता है, संकल्प पूरे होते रहते हैं तो उसका भी कुछ ख्याल है। तो ये मिश्रण है अभी हम लोगों के जीवन में, थोड़े थोड़ा थोड़ा अंश में संसार भी अच्छा लगता है और उसके संयोग का सुख मिल जाए तो उसे भी हम छोड़ने को राजी नहीं हैं, और चाहते हैं कि उसके साथ साथ जिज्ञासा पूर्ति का आनंद भी आ जाए। देहातीत जीवन, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं क्या हूँ, इन सब रहस्यों का उद्घाटन भी हो जाए अपने भीतर, और परम प्रेमास्पद पर प्रभु के प्रेम का रस भी मिल जाए। तो इस असमंजस में अभी हम लोगों के दिन कट रहे हैं। इतना अंधकार नहीं है कि सत्य की ओर से हम लोग बिल्कुल ही लापरवाही करें, इतना अंधकार भी भीतर में नहीं है। ऐसी जड़ता भी नहीं है कि प्रेम स्वरूप परमात्मा को भूल जाए, इतनी जड़ता भी नहीं है। तो परमात्मा की याद भी आती है, सत्य की याद भी आती है, इनकी आवश्यकता भी महसूस होती है, लेकिन इतनी चेतना भी नहीं है कि उसके रास्ते के सब रोड़े एक साथ हटा दे, तो भी नहीं। अच्छा ठीक है, देखेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, उपाय करेंगे, कोशिश करेंगे, सोचेंगे। ऐसा कैसे चल रहा है भाई? तो ऐसा इसलिए चल रहा है कि अभी सत्य के बिना भी, परमात्मा के प्रेम के बिना भी, संसार के संयोग की सहायता से दिन कट रहे हैं। हमको तो ऐसी दशा मालूम होती है। थोड़ा खाने पीने में संयम हो गया, थोड़ा रहन सहन में संयम हो गया, अपने पास सामान थोड़ा कम कर दिया, दूसरों की बुराई करते नहीं है, भले आदमी की तरह रहते हैं, समाज के लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं, इतने ही में संतोष हो गया है। सत्य की जिज्ञासा शिथिल है, प्रभु प्रेम की प्यास शिथिल है, तीव्र होने ही नहीं पाता कि वह उपलब्धि का रूप धारण करे। जिज्ञासा की तीव्रता तीव्रतम हो जाती तो उपलब्धि में बदल जाती। प्यारे प्रभु के प्रेम की प्यास तीव्रतम हो जाती तो मिलन में बदल जाती, लेकिन उसको तीव्रतम मैंने होने नहीं दिया। क्या किया कि उसके विपरीत प्रवृत्तियों को अभी तक छोड़ा ही नहीं है। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं जिस समाज में रहती हूँ उस समाज में किसी का नुकसान न पहुँचा करके, थोड़ा अच्छे ढंग से रहन सहन बना करके, आदरित सम्मानित होकर दिन कटा लेती हूँ। इतने में अपने को संतोष हो गया, इसलिए जिज्ञासा भी तीव्र नहीं हुई और प्रियता की प्यास भी तीव्र नहीं हुई। यही कारण है। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का अनुभव ऐसे ही सामान्यकरण करके कहते थे, भरी सभा में बातें सब कह जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहते थे कि ये मेरे साथ हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन है ये उनकी अपनी घटना। तो बता रहे थे कि भाई देखो, सत्य की जिज्ञासा और प्रिय मिलन की लालसा इतनी जोरदार होती है, इतनी तीव्र होती है कि प्यास लगी है, शारीरिक प्यास, पानी के लिए प्यास लगी है, हाथ में ठंडा मीठा साफ जल ग्लास में भरा हुआ पकड़ा है आदमी, और जल पिया नहीं चाहता। क्या लगता है भीतर से कि किसी प्रकार से प्रभु से मिले पहले और जल पिए पीछे। जो महाराज ऐसी क्या बात? तो ऐसी बात ये है कि प्रिय मिलन की लालसा अति तीव्र जब हो जाती है तो दूसरी सारी औरतें उसके सामने नगण्य हो जाती है। और अपने लिए महाराज जी ने बताया कि मुझको तो ऐसा लगता था कि कहीं ग्लास की घूंट, पानी की घूंट पीने में लग गए तो, और उसी बीच में प्राण पखेरु उड़ गए तो प्रिय मिलन की बात बाकी रह जाएगी। इसलिए हाथ में जल का ग्लास है और भीतर में बहुत जोर की प्यास लगी है, लेकिन पिएंगे नहीं, हाथ का ग्लास हाथ ही में रह गया, पानी ग्लास में ही रह गया, सूखे ओठों तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? प्रिय मिलन की तीव्र लालसा, पहले उनसे मिलो पीछे पानी पियो, इतनी तीव्रता उसमें होती है, इतनी जागृति उसमें होती है, और स्वयं इतना सरस होता है वो जो तो जिज्ञासा का उदय हो गया, इसलिए लालसा का उदय हो गया, तो वो इतना तरस होता है कि उसमें भूखे प्यासे रहने का कोई कष्ट नहीं मालूम होता, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कुछ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भीतर में अपने वास्तविक जीवन से अभिन्न होने की लगन में ही इतना जीवन है, इतना इतनी सरसता है कि उसके आगे शरीर का भूखे रहना और पेट भरना कोई अर्थ नहीं रखता, ऐसा होता है। तो अब हम लोग कैसे करें उस जिज्ञासा की जागृति के लिए और उस प्रिय लालसा की तीव्रता के लिए क्या करें? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि व्यर्थ चिंतन का नाश करो। अब इन दिनों में बहुत अच्छा अवसर है हम सभी भाई बहनों के लिए, प्रातः काल 3:30 से 4 आप चुप रहते हैं, तो मान लीजिए कि पूरी शांति में आधा घंटा का समय नहीं निकलता है, भीतर में हलचल रहती है, किसी कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम लेकिन रहती है। तो मान लीजिए कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा आधा घंटा का समय बिल्कुल व्यर्थ चिंतन से खाली हो जाए, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ अभी तक चल रहा है, तो पहला चित्र हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि शांति काल में व्यर्थ चिंतन चल रहा है। तब दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई व्यर्थ चिंतन के नाश का उपाय करो, ठीक है ना? सार्थक चिंतन करने का प्रश्न नहीं है, व्यर्थ चिंतन के नाश का प्रश्न है। बड़ी भारी भूल होती है कि हम व्यर्थ चिंतन के नाश का उपाय नहीं करते, उसकी जड़ नहीं काटते और सार्थक चिंतन में बड़े जोर से लग जाते हैं। एक साधक सज्जन है, शरीर के संबंध से पुराने संबंध से भाई भी होते हैं और भगवत संबंध से भाई नहीं है। वो एक बार कहने लगे कि दीदी तो मैं तो गुरु जी के बताए हुए ईश्वर के नाम का जप करता हूँ अकेले कमरा बंद करके, और जब भीतर में ज्यादा उपद्रव होता है मन में तो मैं खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान को पुकारता हूँ। ऐसा क्यों करते हो भाई? जोर जोर से पुकारने लग जाओ तो व्यर्थ चिंतन का कष्ट नहीं होता है, पता नहीं चलता है, होता तो भाई है। सुन करके मुझे बड़ा दुख लगा, खूब तीव्र बुद्धि वाला बालक, मेरे लिए तो वो बालक ही है, उम्र में शादी के हिसाब से छोटा है, और माँ बाप के लिए तो एकमात्र सहारा एक ही लड़का, पढ़ने लिखने में भी खूब आगे निकला, काम भी बहुत अच्छा मिला, धन भी खूब कमाया, आजीवन ब्रह्मचारी रहा, ब्याह भी नहीं किया, मंत्र दीक्षा भी दी, खूब जोरदार साधना भी की और जीवन में सरसता अभी तक तो नहीं आई है, भगवान उसको देंगे सहारा आगे मिलेगा। बड़ा कष्ट होता मुझे सुन करके महाराज, इसलिए मैंने उसको बहुत बार मिलाया लेकिन वो क्रिया के वेग वाली साधना का इतना प्रभाव रहता है व्यक्ति पर कि मानव सेवा संघ का सिद्धांत उसको भाता ही नहीं है। महाराज जी के पास जाओ तो कहेंगे कि कुछ मत करो, बड़ा कठिन है कुछ मत करो, उसकी अपेक्षा ये आसान है कि भीतर भीतर उद्गार विवेक विकार सब उथल पुथल मचा रहा है और ऊपर से जोर जोर से खूब नाम लेते रहो, गुण गाते रहो, कीर्तन करते रहो, बाजा बजाते रहो, रजनीत मिल करके समूह में, उसमें शक्ति भी लगती है, अच्छा लगता है, कैथारसिस भी होता है, एनर्जी जो भीतर पैदा हो रही है उसके निष्कासन का एक अच्छा रास्ता मिला, बुरा तो वो है नहीं, नुकसान किसी का पहुंचाएगा नहीं, समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, ये सब बातें तो उसमें है ही है, लेकिन व्यक्ति के भीतर जिस भगवत स्मृति का उदय होना चाहिए था कि जिसके बाद ही संपूर्ण अहम रूपी अणु परमात्मा से मिलकर अभिन्न होता, वो घड़ी ही पैदा नहीं होती है, तो समय ही आने नहीं पाता है। तो क्रिया का वेग व्यक्ति को स्वभाव से पसंद आता है, और शांत रहो तो शांति काल में अंदर की जो हलचल है वो तो अपने को बहुत पीड़ा देती है। साधक के सामने एक चित्र आता है, क्या बताएं, इतने दिन बीत गए, अभी 10 मिनट के लिए भी शांत रहने मुझे नहीं आया, तो पीड़ा होगी ना, तो ये पीड़ा तो उसके लिए हितकर है, लेकिन अपनी हार मनुष्य सह नहीं सकता। तो कुछ न करने वाली साधना बहुत कम लोगों से गले उतरती है, और कुछ करने वाली बात में सब लोग शामिल हो जाते हैं, सहज मालूम होता है। तो जीवन का जो रहस्य है उसको आप सामने रखकर देखिए, तो महाराज जी ने ये कहा कि जब व्यर्थ चिंतन का नाश होगा तो सार्थक चिंतन स्वतः उदित हो जाएगा। तो साधन का करना साधन होने में बदल जाएगा, भगवान को याद करना याद आने में बदल जाएगा। वो तो करना अखंड होगा कि होना अखंड होगा, इसलिए करना हमारा खंडित होता रहता है, आरंभ करते हैं अंत होता है, आरंभ करते हैं अंत होता है, और भीतर 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 अपने में जो जीवनी शक्ति है वो भगवत स्मृति के रूप में एक बार उनसे जुट गई तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब समय वो आपके ध्यान को, आपके मन को, आपके चिंतन को, आपके चित्त को, सबको खींच करके उसकी ओर लगाए रहता है। उदित हो जाना बड़ा ही शुभ लक्षण है, और मुझे ऐसा लगता है कि साधक के जीवन के पुरुषार्थ की परावधि है, पुरुषार्थ वहां खत्म हो गया, चिंतन उदित हो गया तो पुरुषार्थ मेरा खत्म हो गया, अब उसके आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही हमारे मुझको मेरे को अहम को बदल करके नित्य तत्व से अभिन्न करा देगा। बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सरस होता है। उसके संबंध में महाराज जी ने कहा कि अब व्यर्थ चिंतन का नाश कैसे करोगे, उसका उपाय कर लो। क्या क्या करें, 4 कदम बताए हुए, श्रमी संयमी विवेकी तथा प्रेमी। श्रमी बनो, संयमी बनो, विवेकी बनो और प्रेमी बनो तो विश्राम मिलेगा, विश्राम मिलेगा वो तत्व जिज्ञासा और प्रिय लालसा तीव्र होगी। ये फॉर्मूला है, श्रमी संयमी विवेकी और प्रेमी। श्रमी हो सकते हैं कि नहीं, ये हो सकते हैं, और शरीर विज्ञान की दृष्टि से जिन धातुओं के संगठन से शरीर बना उसमें एक प्रकार की क्रिया शक्ति का वेग पैदा होता है, तो उसको खर्च किए बिना किसी से रहा नहीं जाता, लेकिन विवेकी जन जो होते हैं वो सार्थक श्रम करते हैं जो कि विश्राम में बदल जाए, और अविवेकी जन जो होते हैं वो ऐसा श्रम करते हैं कि श्रम से श्रम ही पैदा होता है, विश्राम नहीं मिलता है। अविवेक का श्रम कौन सा है, जिन सुख भोगों में तुम्हें जन्म मरण की बाध्यता में बांध दिया, उन्हीं सुख भोगों में श्रमित होते रहना, ये अविवेक का श्रम है। जिन सुख भोगों ने मुझको जन्म लेने के लिए बाध्य किया, मरने के लिए बाध्य किया, उसी सुख भोग में श्रमित होते रहना, ये अविवेकी का श्रम है। खूब दर्शन करो, खूब दर्शन करो, कभी कभी पहाड़ पर चढ़ाई का कौतूहल आ गया तो उसमें परिश्रम किया, कभी और कुछ, कभी और कुछ, कभी खूब धन कमाने की धुन करी तो उसी में विकास लगे हुए हैं, कभी कमाए हुए धन का सुख भोगने की धुन करी तो उसी में लगे हुए हैं। जिनके पास ज्यादा सुविधाएं रहती हैं और विवेक का नियंत्रण जीवन पर नहीं रहता है, वे ऐसे श्रमित हो जाते हैं, ऐसे श्रमित हो जाते हैं तन से मन से, कि बाद में वे गतियों को रोकना भी चाहते हैं तो रुक नहीं पाता है। मानसिक रोगों का विश्लेषण, निदान और चिकित्सा वाले अध्ययन में इस प्रकार का बहुत प्रमाण मुझे मिला है। तो वो अविवेक का श्रम है। खूब श्रम किया, खूब श्रम किया, खूब शौक पूरा करने में, सुख भोगने में, खेलने कूदने में, मान बड़ाई खरीदने में लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, खूब श्रमित हो गए। तो श्रमित होते होते प्राण वायु, प्राण शक्ति शेष हो गई और सुख भोगने की लालसा, तृष्णा पहले से थोड़ी और गाढ़ी हो गई। तो ये अविवेक का श्रम है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्रमी बनो, संयमी बनो, विवेकी और प्रेमी बनो। तो विवेकी जन ऐसा श्रम करते हैं, ऐसा श्रम करते हैं कि जिसके बाद अपने को विश्राम मिल जाए, सार्थक श्रम करते हैं, साधन रूप श्रम करते हैं, सेवा प्रवृत्ति में श्रमित होते हैं। सेवा प्रवृत्ति में श्रम करो तो अंत में विश्राम मिलेगा, साधन रूप श्रम हो गया तो अंत में विश्राम मिलेगा, सार्थक श्रम हो गया तो वह अपने आप से विश्राम में बदल जाएगा। और प्रेमी होकर श्रम करो, ये प्यारे प्रभु की सृष्टि है, यह प्यारे प्रभु का काम है, यह सब प्रभु रूप ही है, ऐसा मान करके बड़े प्रेम के साथ प्रभु की पूजा के रूप में श्रमित हो, श्रम के बाद बहुत विश्राम मिलता है। दो तीन चार शब्द के प्रयोग में श्रमी बनो, संयमी रहो। संयमी किस बात में? हर क्रिया में अपने लोगों को संयम रखना है, खाने पीने में संयम रखना ही है, सोने जगने में संयम रखना ही है, उतना ही खाओ पियो जो शरीर के लिए हितकर हो आवश्यक हो, उतना ही सो जितना शरीर के लिए हितकर हो आवश्यक हो, उतना ही रखो जितने से तुम्हारा कम से कम में काम चल जाए। तो हर बात में संयम, वाणी में संयम, कर्म में संयम, हाथ पांव की क्रियाशीलता में संयम, खान पान में संयम, निद्रा में संयम, सब तो संयम रहा। और सर्वेंद्रिय संयम का बड़ा महत्व है साधक के जीवन में। तो विवेक युक्त श्रम हो गया, विवेक युक्त संयम हो गया, विवेक युक्त त्याग हो गया और प्रेम पूर्वक सब व्यवहार, भाव, मन से, वचन से, कर्म से, सब प्रकार से। तो इन चारों व्रतों के पालन करने से व्यर्थ चिंतन मिट जाएगा और व्यर्थ चिंतन मिट जाएगा तो सार्थक चिंतन उदित हो जाएगा और सार्थक चिंतन उदित हो जाएगा तो हम लोगों के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी, फिर और कुछ करना नहीं रहेगा, सब हो जाएगा।
धर्म प्राकृतिक विधान है जिसके अनुरूप जीवन होने पर प्राणी के सभी बंधन स्वतः मिट जाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता शेष नहीं रहती। प्राकृतिक विधान किसी भी सीमित अवस्था में आबद्ध रहने के लिए आज्ञा नहीं देता और न किसी से भिन्नता का भाव करने के लिए आज्ञा देता है, अर्थात भिन्नता तथा आसक्ति को मिटाकर केवल त्याग तथा प्रेम का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रवृत्ति में त्याग तथा प्रेम भरपूर है वही वास्तव में धर्म है। जिस प्रकार सभी मिठाइयों में मीठापन चीनी का है उसी प्रकार सभी प्रवृत्तियों में सौंदर्य धर्म का है। दुखी प्राणी को केवल दुखहारी हरि का होकर रहना चाहिए। सच्चा त्याग कल्प तरु के समान है। जिस मन से शरीर आदि वस्तुओं का ध्यान निकल जाता है उस मन में भगवत ध्यान स्वतः होने लगता है, क्योंकि वस्तुओं के ध्यान में भगवत ध्यान से विमुक्त किया है। जिस अहंता से सभी संबंध तथा स्वीकृतियां निकल जाती हैं उस अहंता में आनंद घन भगवान निवास करते हैं। शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपना मत समझो, निरंतर प्रेम पात्र का चिंतन करते रहो अथवा उनको समर्पित हो, अचूक हो जाओ।